पृष्ठ संख्या 81 अध्याय 16 उपन्यास रचना। भारत निवासियों ने यूरोपियन साहित्य के किसी अंग को इतना ग्रहण नहीं किया जितना उपन्यास को। यहाँ तक कि उपन्यास अब हमारे साहित्य का एक अविच्छेद अंग हो गया है। उपन्यास का जन्म 14वीं-15वीं शताब्दी के लगभग हुआ। शेक्सपियर ने अपने कई नाटकों की रचना इटालियन उपन्यासों के ही आधार पर की है। यह शैली इतनी प्रिय हुई कि आज समस्त संसार में साहित्य पर उपन्यास ही का आधिपत्य है। गत 50 वर्षों में भारत की साहित्यिक शक्ति का जितना उपयोग उपन्यास रचना में हुआ उतना शायद साहित्य के और किसी भाग में नहीं हुआ। बंगला ने बंकिम पैदा किया, गुजराती ने गोविंद दास, मराठी ने आपटे, उर्दू ने रतननाथ और शरर, जो संसार की किसी उपन्यासकार से घटकर नहीं है। हिंदी ने पहले अद्भुत रस के उपन्यासकार पैदा किए, पर अब धीरे धीरे उनमें चरित्र चित्रण, मनोभाव और जासूसी के उपन्यास भी प्रकाशित होने लगे हैं और आशा है कि वह थोड़े ही दिनों में इस विषय में किसी प्रांतिक भाषा से दबकर नहीं रहेगी। वास्तव में उपन्यास रचना को सरल साहित्य ब्रैकेट में लाइट लिटरेचर कहा जाता है, इसीलिए इससे पाठकों का मनोरंजन होता है। पर उपन्यासकार को उपन्यास लिखने में उतना ही दिमाग लगाना पड़ता है जितना किसी दार्शनिक को दर्शन शास्त्र के ग्रंथ लिखने में। उसे सबसे पहले उपन्यास का विषय खोजना पड़ता है, क्या लिखे, भौतिक वैभव की असारता दिखावे या मनोभावों का पारस्परिक संग्राम, कोई गुप्त रहस्य चुने या किसी ऐतिहासिक घटना का चित्रण करें। लेखक अपनी रुचि और प्रकृति के अनुकूल ही इनमें से कोई विषय पसंद कर लेता है। विषय निर्धारित हो जाने के पश्चात उसे प्लाट की चिंता होती है, वह सोता हो या जागता, चलता या बैठा, इसी चिंता में डूबा रहता है। कभी कभी उसे सोच विचार में महीनों बरसों लग जाते हैं। इस चिंता में लेखक जितना ही व्यस्त होगा उतनी ही उत्तम उसकी रचना होगी। उपन्यास की बुनियाद पड़ गई, अब हमें अपना भवन खड़ा करने के लिए मसाले की आवश्यकता होती है। उसके मुख्य साधन ये हैं: 1 अवलोकन, 2 अनुभव, 3 स्वाध्याय, 4 अंतर्दृष्टि, 5 जिज्ञासा, 6 विचार आकलन। कहते हैं अमेरिका के सुविख्यात साहित्यकार मार्क ट्वेन ने इस बात का अनुभव प्राप्त करने के लिए कि बिना टिकट रेल ट्राम में सफर करने वालों के चित्त की क्या दशा होती है, कई बार बिना टिकट सफर किया। ऐसे ही एक और सज्जन ने पेरिस के चकलों की तस्वीर खींचने के लिए महीनों शौहदों और गुंडों की संगति की। एक तीसरे महाशय ने चोर के हृदय के भावों को जानने के लिए स्वयं सेंध तक मारी। पृष्ठ संख्या 82। इसका कारण यह जान पड़ता है कि पाश्चात्य देश के लेखक कल्पना शून्य होते हैं। उपन्यासकार को ऐसी दशाओं में और मनोभावों के वर्णन करने में अपनी कल्पना शक्ति ही सबसे बड़ी मददगार है। ऐसा बिरला ही कोई प्राणी होगा जिसने बचपन में पैसे या मिठाई न चुराई हो, या चोरी से मेला या दंगल देखने न गया हो, अथवा पाठशाला में अध्यापक से बहाने न किए हो। यदि कल्पना शक्ति तीव्र हो तो इतने अनुभव को चोरों और डकैतों के मनोभाव चित्रित करने में कृत कार्य कर सकती है। यह कहने की आवश्यकता नहीं कि कृत्रिम अवस्थाओं में जो अनुभव प्राप्त होते हैं वे स्वाभाविक नहीं हो सकते। फिर भी उपन्यास की सफलता के लिए अनुभव सर्व प्रधान मंत्र है। उपन्यास लेखक को यथासाध्य नए नए दृश्यों को देखने और नए नए अनुभवों को प्राप्त करने का कोई अवसर हाथ से न जाने देना चाहिए। प्राणियों के मनोभाव को व्यक्त करने के लिए दूसरा साधन अपने भाव को टटोलना है। सर फिलिप सिडनी का कहना था कि अपनी निगाह अपने हृदय में डालो और जो कुछ देखो लिखो। लेखक अपने को कल्पना के द्वारा जितनी ही भिन्न भिन्न परिस्थितियों में रख सकता है उतना ही सफल मनोरथ होता है। तुलसीदास ने पुत्र शोक कितनी सफलता से दिखाई है, विदित ही है कि उन्हें इस शोक का प्रत्यक्ष अनुभव न था। अपने को शोकातुर वियोगी पिता के स्थान में रखकर ही उन्होंने उन भाव का अनुभव किया होगा। स्वाध्याय से भी उपन्यासकार को बड़ी मदद मिलती है। एक ऋषि का कथन है कि स्वाध्याय मनुष्य को संपूर्ण बना देता है। कुछ लोगों का कहना है कि उपन्यास लेखक को पढ़ना न चाहिए, इससे उसकी मौलिकता मारी जाती है। पर डॉक्टर एल राय ने कहा है, जिस लेखक की मौलिकता पुस्तकावलोकन से मारी जाती है उसमें मौलिकता है ही नहीं। स्वाध्याय का उद्देश्य यह न होना चाहिए कि किसी कुशल लेखक के भाव और विचार उड़ाए जाएं, बल्कि अपने भाव और विचारों की अन्य लेखकों से तुलना की जाए और उससे अच्छी रचना करने के लिए अपने को प्रोत्साहित किया जाए। अगर हमें किसी लेखक की रचना में ऐसा कोई स्थान दिखाई दे जहां उसकी कल्पना शिथिल पड़ गई है तो हम प्रयत्न करें कि उसी के अनुरूप स्थान पर उससे अच्छा लिख सकें। लेखक को और विशेषकर उपन्यास लेखक को विविध साहित्य का भली भांति अध्ययन किए बिना कलम न उठाना चाहिए। यह बात नहीं है कि बिना बहुत पढ़े कोई अच्छा उपन्यास नहीं लिख सकता। जिन्हें ईश्वर ने प्रतिभा दी है उनके लिए बहुत पढ़ना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिस प्रकार बिना व्याकरण पढ़े हुए चाहे हम शुद्ध लिखें पर अशुद्धियों से बचने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं रहता, उसी प्रकार तुलना और स्वाध्याय से हमें अपनी त्रुटियों का बोध होता है, हमारी बुद्धि विकसित होती है और उन साधनों की झलक मिल जाती है जिनके द्वारा किसी बड़े लेखक ने सफलता प्राप्त की है। पृष्ठ संख्या 83। कुछ लोगों को भ्रम है कि अपनी रचनाओं के विषय में किसी से कुछ पूछने या राय लेने से उनका अपमान होता है, पर वास्तव में लेखक को जिज्ञासा की उतनी ही जरूरत है जितनी की किसी विद्यार्थी को। फ्रांसिस बेकन के विषय में कहा जाता है कि वह सदैव ऐसे पुरुषों से जिज्ञासा करता रहता था जो किसी विषय में उससे अधिक ज्ञान रखते थे। कोई आदमी चाहे वह कितना ही प्रतिभाशाली क्यों न हो, वह सब विद्याओं का ज्ञाता नहीं हो सकता। उसे अगर किसी से कुछ पूछना पड़े तो संकोच क्यों करे। D.L. राय महोदय जब कोई ड्रामा लिखते थे तो उसे अपने रसिक मित्रों को सुनाते थे, उनकी आलोचना का उत्तर देते थे और जहाँ कहीं कायल हो जाते थे अपनी रचना में काट छाट कर देते थे। कभी उन्हें अध्याय के अध्याय और सीन के सीन बदलने पड़ते थे। लेखक को सदैव अपना आदर्श ऊंचा रखना चाहिए। उसके मन में यह धारणा होनी चाहिए कि या तो कुछ लिखूंगा ही नहीं या लिखूंगा तो कोई अच्छी चीज जिससे बढ़कर उसी विषय पर फिर जल्द कोई न लिख सके। कभी कभी ऐसा होता है कि रास्ते चलते चलते कोई नई बात सूझ जाती है अथवा कोई नया दृश्य आंखों के सामने से गुजर जाता है। लेखक में ऐसा गुण होना चाहिए कि वह ऐसे भाव और दृश्यों को स्मृति पट पर अंकित कर ले और आवश्यकता पड़ने पर उनका व्यवहार करे। कुछ लेखकों की आदत होती है कि वे अपने साथ नोटबुक रखते हैं और ऐसी बातें उसमें तुरंत टांक देते हैं। जिस लेखक को अपनी स्मरण शक्ति पर विश्वास न हो उसे अपने साथ नोटबुक अवश्य रखनी चाहिए। डायरी लिखना भी अपने विचारों को लेखबद्ध करने की आदत डालता है। प्लाट उन घटनाओं को कहते हैं जो उपन्यास के चरित्रों पर घटित हो, लेकिन केवल घटनाओं का वर्णन करने से ही कहानी में मनोरंजकता का गुण पैदा नहीं हो सकता। उन घटनाओं को कल्पना द्वारा ऐसा सजीव बनाना चाहिए कि उनमें वास्तविकता झलकने लगे। एक उपन्यासकार ने लिखा है कि उकलेदिस की भांति हम लोगों को अपनी कथा सामने रख देनी चाहिए और तब उसके हल करने में प्रस्तुत हो जाना चाहिए। उकलेदिस की विचार श्रृंखला में कोई ऐसी युक्ति प्रविष्ट नहीं हो सकती जिसके लिए वहाँ अनिवार्य रूप से स्थान न हो। हम भी उसी का अनुसरण करके उच्च कोटि के उपन्यासों की रचना कर सकते हैं। साधारणतः प्लाट वह कथा है जो उपन्यास पढ़ने के बाद साधारण पाठक के हृदय पट पर अंकित हो जाती है। पुराने ढंग की कथाओं में बस प्लाट ही प्लाट होता था, उसमें रंग और रोगन की मात्रा न रहती थी, इसीलिए वह चित्र इतना भड़कीला न होता था। आजकल 500 पृष्ठों के उपन्यास की कथा 10-5 पंक्तियों में ही समाप्त हो जाती है, लेकिन इन्हीं 10-5 पंक्तियों के सोचने में उपन्यासकार को जितना मनन और चिंतन करना पड़ता है उतना सारा उपन्यास लिखने में भी नहीं करना पड़ता। वास्तव में प्लाट सोच लेने के बाद फिर लिखना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन प्लाट सोचने के साथ ही चरित्रों की कल्पना भी करनी पड़ती है जिनके द्वारा यह प्लाट प्रदर्शित किया जाए। चार्ल्स डिकेंस के विषय में लिखा है कि जब वह किसी नए उपन्यास की कल्पना करते थे तो कई महीनों अपने कमरे को बंद कर विचार मग्न पड़े रहते थे, न किसी से मिलते थे न कहीं सैर करने ही जाते थे। पृष्ठ संख्या 84। जब 2-3 महीने के बाद उनके किवाड़ खुलते थे तो उनकी दशा किसी रोगी से अच्छी न होती थी। मुंह पीला, आंखें भीतर को धसी हुई, शरीर दुर्बल। ठेकरे के विषय में लिखा हुआ है कि वह संध्या समय किसी नदी के तट पर बैठकर अपने प्लाट सोचा करता था, पर प्लाट को जल्द या देर में कल्पित कर लेना लेखक की बुद्धि सामर्थ्य पर निर्भर है। जॉर्ज सेंड फ्रांस की सुविख्यात लेखक लेखिका हैं, उसने 100 से कम उपन्यास नहीं लिखे, पर उसे प्लाट सोचने में बुद्धि नहीं लड़ानी पड़ती थी। वह कलम हाथ में लेकर बैठ जाती थी और लिखने के साथ ही प्लाट भी बनता चला जाता था। सर वाल्टर स्कॉट के बारे में यही मशहूर है कि वह प्लाट सोचने में मस्तिष्क नहीं लड़ाते थे। कुछ कहानियां ऐसी भी होती हैं जिनमें कोई प्लाट ही नहीं होता। मार्क ट्वेन का इनोसेंट एब्रोड इसी ढंग का उपन्यास है। प्लाटो की कल्पना भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। साधारणतः उसके 6 भेद माने गए हैं। 1. कोई अद्भुत घटना। 2. कोई गुप्त रहस्य। 3. मनोभाव चित्रण। 4. चरित्रों का विश्लेषण और तुलना। 5. जीवन के अनुभवों को प्रकट करना। 6. कोई सामाजिक या राजनीतिक सुधार। 1. कोई अद्भुत घटना। कहानी वही अद्भुत होती है जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो। प्राचीन कथाएं बहुधा इसी किस्म की होती थी। ऐसी कहानी का उद्देश्य केवल पाठकों का मनोरंजन है। पढ़ने से कल्पना की वृद्धि होने के कारण बहुधा बालकोपयोगी कहानियों में यह प्रणाली उपयुक्त समझी जाती है। प्रौढ़ावस्था में ऐसी कहानियों में जी नहीं लगता। बहुधा नैतिक और आचरण संबंधी उपदेश भी ऐसी कहानियों के द्वारा दिए जाते हैं। इंग्लैंड के विख्यात लेखक स्विफ्ट ने गुलीवर की यात्रा नाम की प्रसिद्ध पुस्तक में समाज पर व्यंग किया है। वह भी अद्भुत घटनाओं का ही सहारा लेता है। बहुधा दृष्टांतों या एलिगरी में अद्भुत घटनाओं द्वारा जीवन के गूढ़ तत्व हल किए जाते हैं। इंग्लैंड में जॉन बनियन का पिलग्रिम्स प्रोग्रेस अद्वितीय एलिगरी है। हमारे यहाँ प्राचीन ऋषियों ने बहुधा दृष्टांतों द्वारा ही जन साधारण को उपदेश दिए हैं। महाभारत, पुराण, उपनिषद आदि में ऐसे दृष्टांत भरे पड़े हैं। वर्तमान समय में टॉल्स्टॉय और हार्थन ने बहुत ही शिक्षा प्रद और अनूठे दृष्टांत रचे हैं। अतएव अप्राकृतिक घटना प्रधान उपन्यासों की रचना यदि बहुत सरल है तो उसके साथ ही अत्यंत कठिन भी है। पृष्ठ संख्या 85। 2. कोई गुप्त रहस्य। जासूसी के उपन्यास सब इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार की उपन्यास लिखने में लेखक को दो बड़ी शंकाओं का सामना करना पड़ता है। संभव है रहस्य आरंभ से ही खुल जाए अथवा लेखक की रहस्योद्घाटना पाठक को संतोष प्रद न हो। भारतवर्ष में पहले ऐसी कहानियों की प्रथा न थी। यूरोप में ऐसी कहानियों को लोग बड़े चाव से सुनते थे, बड़े शौक से पढ़ते थे। इधर कुछ दिनों से पैशाचिक घटनाएं भी रहस्यों द्वारा प्रकट की जाने लगी हैं। इंग्लैंड में कानन डायल इस श्रेणी के उपन्यासकारों में बहुत सिद्ध हस्त हैं। फ्रांस में मार्स लेब्लांक और अमेरिका में पो कानन डायल अभी जीवित हैं और अब आपराधिक विषयों की ओर उनकी अधिक प्रवृत्ति है। जासूसी उपन्यासों में लेखक कोई घटना सोचकर एक कल्पित जासूस को उसके सुलझाने में लगा देता है। ऐसी घटनाओं में सर्वश्रेष्ठ गुण यह है कि उस घटना या रहस्य का खोलना जाहिरा असंभव प्रतीत हो, पर लेखक जब उसे खोल दे तो पाठक को आश्चर्य हो कि मुझे यह बात क्यों न सूझी, यह तो बिल्कुल साधारण बात थी। इसके साथ पाठक उस रहस्य को किसी दूसरी रीति से खोलने में असमर्थ हो। लेखन का कौशल इस बात में है कि जिस चरित्र को पाठक और लेखक स्वयं दोषी समझते हो वह अंत में निरपराध सिद्ध हो जाए। ऐसे उपन्यास बहुत ही रोचक होते हैं और उनके पढ़ने से बुद्धि तीव्र होती है। कठिन समस्याओं में दिमाग लड़ाने की शक्ति पैदा होती है, मगर उनका लिखना इतना कठिन है कि अब तक हिंदी में शिवाकानन डायल या अन्य लेखकों की कहानियों के अनुवाद के सिवा किसी ने स्वतंत्र कल्पना नहीं की। 3. मनोभाव का चित्रण। ऐसे उपन्यासों में लेखकों का ध्यान घटना वैचित्र की ओर बहुत कम रहता है। वह ऐसी ही घटनाओं का आयोजन करता है जिनमें उनके चरित्रों को अपने मनोभावों के प्रकट करने का अवसर मिले। घटनाएं कम होती हैं, पात्रों के विचार अधिक। टॉल्स्टॉय के उपन्यासों में यही गुण प्रधान है। ऐसे उपन्यासों को रचने के लिए आवश्यक है कि लेखक अपने को विभिन्न अवस्थाओं में रख सके। इस प्रकार की कहानियों में लेखक को पाठकों के सामने अनिवार्य रूप से अधिकतर अपना ही हृदय खोल कर रखना पड़ता है। दूसरों के मनोगत भावों को जानने का उसके पास और क्या साधन हो सकता है। कोई अपने मन का भाव किसी से नहीं नहीं कहता बल्कि और छिपाता है। अगर किसी को किसी मित्र के मनोभाव का ज्ञान हो भी सकता है तो बहुत कम। इसीलिए ऐसे उपन्यास लिखना लोहे के चने चबाना है। उपन्यासकार को नित्य अपने अंतर की ओर ध्यान रखना पड़ता है। जॉर्ज इलियट के उपन्यास अधिकतर इसी श्रेणी के हैं। पृष्ठ संख्या 86-4 चरित्रों का विश्लेषण और 5 जीवन के अनुभवों को प्रकट करना। इन दोनों प्रकारों के उपन्यास लिखने के लिए जरूरी है कि लेखक में दिव्य कल्पना शक्ति के साथ अवलोकन और निरीक्षण की भी प्रचुर मात्रा हो। इसीलिए कहा गया है कि उपन्यासकार को सभी श्रेणी के मनुष्यों से मिलना जुलना आवश्यक है। उसे अपनी आंखें और कान सदैव खुले रखने चाहिए। एक ही परिस्थिति में दो भिन्न भिन्न विचारों के व्यक्ति क्या करते हैं, एक ही घटना दोनों को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका निरूपण सहज नहीं है। अनुभव बाह्य जगत संबंधी भी होते हैं और अंतर जगत संबंधी भी। लेखक को प्राकृतिक दृश्यों का, विचित्र घटनाओं का बड़े ध्यान से अवलोकन करना चाहिए। प्रातः काल समीर के झोंकों में नदी की तरंगों की कैसी छटा होती है, आकाश कौन कौन से रूप धारण करता है, ऐसे अगणित दृश्य सफलता के साथ वही लिख सकता है जिसने स्वयं उनको गौर से देखा हो। केवल कल्पना यहाँ काम नहीं दे सकती। लाजिम है कि लेखक वही दृश्य दिखावे, उन्हें चरित्रों की तुलना करे जिनका उसने स्वयं अनुभव किया हो। जिसने समुद्र नहीं देखा वह किसी समुद्र का दृश्य क्यों कर लिखेगा, जिसने ग्रामीणों की संगति नहीं की वह ग्रामीण जीवन का चित्र क्यों कर खींच सकता है। यही सफलता प्राप्त करने के लिए यूरोप के कई विख्यात उपन्यासकारों ने वेश बदल कर उन स्थितियों का अध्ययन किया है जिनके आधार पर वे अपना उपन्यास लिखना चाहते थे। 6 कोई सामाजिक या राजनैतिक सुधार। किसी उद्देश्य विशेष से लिखे गए उपन्यासों की संख्या आजकल सभी भाषाओं में बहुत अधिक है। उर्दू में भी ऐसे कितने ही उपन्यास हैं, मुख्य भाषाओं का तो कहना ही क्या। आजकल सुधार सुधार के घोर नाद से सारा वायुमंडल निनादित हो रहा है। कहीं पुलिस के सुधार की चर्चा है, कहीं कारागारों की, न्यायालयों की, कहीं सामाजिक प्रथाओं की, कहीं शिक्षा पद्धति की। यह विवादास्पद विषय है कि उपन्यास किसी उद्देश्य से लिखना चाहिए या नहीं। प्रवीण समालोचक गण की राय में साहित्य का उद्देश्य केवल भाव चित्रण ही होना चाहिए। उद्देश्य से लिखी हुई कहानियों में बहुधा लेखक को विवश होकर असंगत बातें कहलानी पड़ती है, अनावश्यक घटनाओं की आयोजना करनी पड़ती है और सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि उसे उपदेशक का स्थान ग्रहण करना पड़ता है। मगर रसिक समाज किसी से उपदेश लेना नहीं चाहता, उसे उपदेशों से अरुचि है और उपदेशकों से घृणा। वह केवल मनोरंजन और मनोदर्शन चाहता है। पर इसके साथ ही यह भी मानना पड़ेगा कि गत शताब्दी में पाश्चात्य देशों में जितने सुधार हुए हैं उनमें अधिकांश का बीजारोपण उपन्यासों के ही द्वारा किया गया था। डिकेंस के प्रायः सभी उपन्यास, टॉल्स्टॉय के कई उत्तम उपन्यास, मैक्सिम गोर्की, तुर्गेनेव, बाल्जक, ह्यूगो, मैरी करेली, जोला आदि प्रधान उपन्यासकारों ने सुधारों ही के उद्देश्य से अपने ग्रंथ रचे हैं। हाँ, कुशल लेखक का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह सुधार के जोश में कथा की रोचकता को कम न होने दे। वह उपन्यास और अपने चरित्रों को उन्हीं परिस्थितियों में रखे जिनको वह सुधारना चाहता है। यह भी परमा आवश्यक है कि वह सुधार के विषय को खूब सोच ले और अतियुक्ति से काम न ले, नहीं तो उसका प्रयास कभी सफल न हो सकेगा। पृष्ठ संख्या 87 लेखक वृंद प्रायः अपने काल के विधाता होते हैं। उनमें अपने देश को, अपने समाज को दुख, अन्याय अथवा मिथ्यावाद से मुक्त करने की प्रबल आकांक्षा होती है। ऐसी दशा में असंभव है कि वह समाज को अपने मनमाने मार्ग पर चलने दे और स्वयं खड़ा हाथ पर हाथ रखे देखता रहे। वह अगर और कुछ नहीं कर सकता तो कलम तो चला ही सकता है। शेक्सपियर और कालिदास के समय में सुधार की आवश्यकता आज से कम नहीं थी, लेकिन उस समय राजनीतिक ज्ञान का इतना प्रसार न था। रसई लोग भोग विलास करते थे, कवि और लेखक उनकी विलास वृत्तियों को और उत्तेजित करते थे। प्रजा पर क्या गुजरती है इधर किसी का ध्यान न था। यह समाज जीवन संग्राम का है। आज हम जो शिक्षित कहलाते हैं तटस्थ होकर अन्याय होते नहीं देख सकते। प्लाट का महत्व जानने के बाद अब हम यह जानना चाहेंगे कि अच्छे प्लाट में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए। समालोचकों के मतानुसार वे यह हैं: सरलता, मौलिकता, रोचकता। प्लाट सरल होना चाहिए। बहुत उलझा हुआ पेंचीदा शैतान की आंत पढ़ते पढ़ते जी उकता जाए, ऐसे उपन्यास को पाठक ऊब कर छोड़ देता है। एक प्रसंग अभी पूरा नहीं होने पाया कि दूसरा आ गया, वह अभी अधूरा ही था कि तीसरा प्रसंग आ गया। इससे पाठक का चित्त चकरा जाता है। पेचीदा प्लाट की कल्पना इतनी मुश्किल नहीं है जितनी किसी सरल प्लाट की। सरल प्लाट में बहुत से चरित्रों की कल्पना नहीं करनी पड़ती, इसीलिए लेखक को अल्प संख्यक चरित्रों के भाव, विचार, गुण, दोष, आचार व्यवहार को सूक्ष्म रूप से दिखाने का अवसर मिल जाता है। इससे उसके चरित्रों में सजीवता आ जाती है और वह पाठक के हृदय पर अपना अच्छा या बुरा असर छोड़ जाते हैं। यह बात बहुसंख्यक चरित्रों के साथ नहीं प्राप्त हो सकती। प्लाट में मौलिकता का होना भी जरूरी है। जिस बात या विषय को अन्य लेखकों ने लिख डाला हो, उसे कुछ हेर फेर करके अपना प्लाट बनाने की चेष्टा करना अनुपयुक्त है। प्रेम वियोग आदि विषय इतनी बार लिखे जा चुके हैं कि उनमें कोई नवीनता नहीं बाकी रही। अब तो पाठक कहानियों में नए भावों का, नए विचारों का, नए चरित्रों का दिग्दर्शन करना चाहते हैं। अब शुक बहतरी से पाठकों को तस्कीन नहीं होती। प्लाट में कुछ न कुछ ताजगी, कुछ न कुछ अनोखापन अवश्य होना चाहिए। रही रोचकता, वह मौलिकता की सहगामिनी है। मौलिक प्लाट है तो वह रोचक भी जरूर ही होगा, लेकिन कहानी की रोचकता किसी एक बात पर निर्भर नहीं है। प्लाट की सुंदरता, चरित्रों का चित्रण, घटना का वैचित्र सभी सम्मिश्रित हो जाते हैं और रोचकता आप ही आप आ जाती है। हाँ, उपन्यासकार यह कभी नहीं भूल सकता कि उसका प्रधान कर्तव्य पाठकों का गम गलत करना है, उनका मनोरंजन करना है और सभी बातें इसके अधीन हैं। जब पाठक का जी ही कहानी में न लगा हो तो वह क्या लेखक के भाव को समझेगा, क्या उसके अनुभवों से लाभ उठाएगा? वह घृणा के साथ किताब को पटक देगा और सदा के लिए उपन्यासों का निंदक हो जाएगा। पृष्ठ संख्या 88। आज भी कितने ही ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जिन्हें उपन्यासों से चीड़ है। उन्होंने व्रत कर लिया है कि उपन्यास कदापि न पढ़ेंगे। कारण यही है कि हिंदी के वर्तमान उपन्यासों ने उन्हें निराश कर दिया है। नए उपन्यास लेखकों का कर्तव्य है कि वे उपन्यास साहित्य के मुख को उज्जवल करें, इस बदनामी के दाग को मिटा दें। माधुरी, 23 अक्टूबर 1922।